आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम कोमल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने हिंदी विषय से अपनी मास्टर्स की है। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय संज्ञा। तो विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी और उस कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय। तो कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी है पंकज और आरती दोनों दोस्त हैं। वह दोनों कानपुर में रहते हैं और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और दोनों अपने स्कूल बस से जाते हैं और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तो इस छोटी सी कहानी में मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ। इसमें से व्यक्तियों के नाम अलग कीजिए, भावों के नाम अलग कीजिए, स्थान का नाम अलग कीजिए और वस्तु का नाम अलग कीजिए। वस्तु से तात्पर्य कोई भी चीज। तो सही पहचाना आप लोगों ने। इस कहानी में जो व्यक्तियों के नाम है वो है पंकज और आरती, स्थान हो गया कानपुर और वस्तु हो गई बस और भाव हो गई दोस्ती। तो आगे क्या, आगे हम जानेंगे इन व्यक्ति भाव और स्थान वस्तु के आधार पर संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा जो होगी वो इस तरह से होगी, किसी भी व्यक्ति भाव स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे इस कहानी में मैंने आपको बताया। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसा प्राणी हो जिसका कोई नाम ना हो? ऐसा हो सकता है कि आपको नाम ना पता हो या आपको उसका गलत नाम पता हो, पर ऐसा कुछ नहीं है जिसका नाम ना हो और इसे ही संज्ञा कहते हैं, इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कई ऐसी चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी जिनका अपना एक नाम है, तो वो सभी किसके अंदर आएंगी? वो सभी संज्ञाओं के अंदर आएंगी। ये सभी संज्ञा है, जिसका भी जो नाम है उस नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे संज्ञा के कितने प्रकार हैं या उसके कितने भेद हैं। तो वैसे तो संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं, परंतु आगे आधुनिक समय में इसको पांच भागों में विभाजित करके इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये विभाजन किया गया है। तो ये गिनती पे पांच है, संज्ञा के प्रकार पांच हैं और प्रकारों के नाम होंगे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे आप नोट भी कर सकते हैं और हम जानेंगे एक एक करके इनकी परिभाषाएं और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले जानते हैं जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा यदि मैं आपको समझाऊं तो हर उसका नाम जो किसी सेम सामान्य पदार्थ का नाम हो, जैसे नदी कहने से आपको सारी नदियों के नाम याद आ जाएंगे। तो जो नदी है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये सभी नदियों के बारे में बताता है। पहाड़ है तो सभी तरह के पहाड़ आपको याद आ जाएंगे। वैसे ही अगर मैं बोलूं राजधानियां, तो ये सारी राजधानियों के, केवल दिल्ली की बात ही नहीं करेंगे तो हम सारे प्रदेशों की राजधानियां हमारे हमको याद आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। किसी भी प्राणी वस्तु का नाम जो किसी एक समान प्रकार के जाति का प्रतीक कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारत में कई नदियां बहती हैं जिसमें से गंगा और यमुना प्रमुख हैं। तो इसमें जो नदियां हैं ये जातिवाचक संज्ञा होगी। और आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि मैं आपको समझाऊं तो एक विशेष, मतलब एक स्पेसिफिक नाम, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं हम लोग, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारत में कई नदियां हैं जिसमें से गंगा, यमुना, सरस्वती प्रमुख नदियां हैं। तो इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती, ये जो तीनों नाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे आगरा में ताजमहल है, तो इस उदाहरण में आगरा और ताजमहल दोनों ही एक विशेष प्रकार के शहर में विशेष प्रकार का स्थान है। तो ये दोनों ही विशेष प्रकार के नाम और स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे था हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिसमें किसी एक ग्रुप के पदार्थ वस्तुओं के नाम आते हैं, जैसे
कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सभा बिठाई है। इस वाक्य में सभा समूहवाचक संज्ञा है। मेरी कक्षा में 45 बच्चे हैं, तो इस वाक्य में कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, जहां पर एक से अधिक पदार्थों, वस्तुओं, प्राणियों का समूह हो, उस समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम ऐसे समझ सकते हैं जिस भी वस्तु को हम तौल या नाप सके, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे लोहे का भाव बढ़ रहा है, तो इसमें लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि लोहे को हम तौल सकते हैं। कल दूध लेने राहुल जाएगा, इस वाक्य में दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि दूध को भी हम नाप सकते हैं, वो लीटर्स में मिलता है। पानी भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस भी वस्तु को हम नाप या तौल सके, उसके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा भाव क्या होते हैं। तो भाव हमारे अंदर की फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर उनके नाम हैं। जैसे मेरे दादाजी बूढ़े होते जा रहे हैं, इसमें बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा है, वो दिखाई नहीं देता है पर उसका नाम है। लंबाई, रोना, गुस्सा, प्रेम, ये सभी प्रकार के जो नाम हैं, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से आपने हमारे संज्ञाओं के पांचों भेदों को अच्छे से समझ लिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लिंग क्या होता है। संज्ञा नाम है, और संसार में जितने भी नाम हैं, वो दो भागों में विभाजित हैं या दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर चीज या तो पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है। कोई भी वस्तु का नाम इन दो जातियों से होकर ही गुजरता है, इसलिए संज्ञा में लिंग का अति महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी के आगे हम लिंग को समझेंगे। रोहन पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गए। मेले में उन्होंने शेर शेरनी, बंदर बंदरियों को देखा और वो बहुत खुश हुए। इस छोटी सी कहानी में यदि मैं आपको कहूँ कि आप पुरुष और महिला वर्गों को अलग अलग कीजिए, मेल और फीमेल को अलग अलग कीजिए, तो आप अलग कैसे करेंगे? जैसे रोहन पिंकी में रोहन किस में आएगा? मेल में आएगा, और पिंकी फीमेल में आएंगी। मम्मी फीमेल में, पापा मेल में, शेर कहाँ आएगा? मेल में, और शेरनी फीमेल में। वैसे ही बंदर और बंदरियों को भी हम ऐसे विभाजित करेंगे। तो इस तरीके से आप ये समझ चुके हैं कि जो भी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान है, वो सभी दो वर्गों में विभाजित है, पुरुष और महिला। मतलब इसे हिंदी व्याकरण में कहा जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इसी आधार पर शब्दों का गठन किया जाता है या शब्दों को बनाया जाता है हिंदी भाषा में। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो वस्तुओं के नामों में फर्क होता है, और एक जर्नली जैसे हम घोड़ा घोड़ा, घोड़ी, शेर शेरनी, बंदर बंदरिया, मम्मी पापा बोलते हैं। तो इसी तरह से प्रकृति में जितने भी वस्तुओं, ये संसार में जितने भी वस्तुओं के नाम हैं, वो सभी दो वर्गों में विभाजित हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा को समझने के साथ लिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आप इस कहानी से लिंग को समझ चुके होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वचन की। वचन का भी अपना एक अलग स्थान है संज्ञा के अंतर्गत। जब हम एक और एक से अधिक चीजों की बात करते हैं, तब हम वचन को समझते हैं वहां पर। जैसे राहुल वहां बैठा है और राहुल के साथ उसके 5-6 दोस्त बैठे हैं, तो मेरा वाक्य होगा लड़के वहां पर बैठे हैं। तो ये वचन के आधार पर मैं इस तरीके से अपने वाक्यों को बदलती हूँ या उसे चेंज करती हूँ। हिंदी व्याकरण में वचन को दो भेदों में बांटा गया है। इनके भेद हैं एकवचन और बहुवचन। एकवचन से जैसे कि आपको पता चल रहा है, एक कोई एक होगा तो वो एकवचन के अंतर्गत आएगा, और कोई दो होगा तो वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। इसमें आपको उदाहरण दूंगी मैं, जैसे गाड़ी गाड़ियां, ट्रेन ट्रेने, जानवर जानवर, खिड़की खिड़कियां, संदूक संदूके, लड़की लड़कियां, औरत औरतें। तो इस तरीके से ये वचन के उदाहरण हैं। जहां एक से अधिक चीजें आती हैं वहां बहुवचन, और जहां एक चीज आती है उसे एक वचन में बांटा जाता है। तो इस तरीके से आपने आज समझा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा सीखी, और साथ ही संज्ञा को प्रभावित करने वाले रूपों को समझा, वो थे लिंग और वचन। आगे आने वाले क्लासों में और भी व्याकरण को हम जानेंगे। और आप घर बैठे, आपका एक होमवर्क है कि आप हर चीज के नाम को नोट करें और उस नाम को उनके भेदों के आधार पर बांटें और समझें। शुक्रिया।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।